हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यो माजम मनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेशु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मेरे मुझे जन्म अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के आरंभ में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को समझता है, परम सत्य को भगवान करके समझता है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली। इसका अर्थ है ब्रह्म और परमात्मा को साक्षात्कार करना वो आसान है, लेकिन भगवान को साक्षात्कार करना कठिन है, ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे जो साक्षात्कार कर लेता है तुरंत ही वो मुक्त हो जाता है, ऐसे बोलते। सो अगला श्लोक, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुःखम भवो भावो वयम चाभमेव च अहिंसा समता धनम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो ये सब गुण क्या है? भगवान से ही उत्पन्न है। ये क्यों वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान इन सभी गुणों को? भगवान के विभूति है। यहाँ पर क्या विषय चल रहा है बताइए? उनकी महिमा तो चल रहा है, ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य के महिमा को। क्या महिमा है उनका कि क्या क्या हम लोग फिर चर्चा किया इससे पहले? जो सुरगण, देवतागण और महर्षिगण भी ये नहीं जान सकते हैं, वो पहला चीज। दूसरा चीज, इन ऐश्वर्यों को, भगवान के ऐश्वर्यों को जो जानता है, वो अजन्मा है, वो कैसे अनादि है, व्यक्ति लोक महेश्वरा, वो असमोड़ा और सर्व पाप से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद भगवान इन गुणों को बता रहे हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान? विभिन्न लोकों के निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो फिर ऐसे ही वो उनके ऐश्वर्यों का गुणगान करते जाते हैं भगवान। यहाँ पर इन गुणों को इसलिए वर्णन कर रहे हैं, इन गुणों से भी हम लोग, ये गुणों से युक्त है तो भी हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। समझ में आ गया? तो क्योंकि ये गुण भी भगवान से ही आते हैं। जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। इससे पहले उन्होंने क्या बताया था? देवतागण, सुरगण और महर्षिगण भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और आगे भी बताएंगे कि महर्षि, सप्त पूर्वे, चत्वारा मनवस्थता, वो लोग भी मेरे से आए, उनके द्वारा सभी जीवों का सृष्टि हो गया। या एक और चीज है कि इन गुण, ये गुण सभी भगवान से आते हैं करके समझना, ये सभी ऐश्वर्य है भगवान के। सो यहाँ इन गुणों को श्रील प्रभुपाद कृष्ण बाणामृत संबंधित वर्णन करते हैं। सो भगवान कृष्ण के संबंध में या कृष्ण बाणामृत के संबंध में इन सब को वर्णन करते हैं। तो जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर दोनों है, अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। तो पहले पहला क्या है, बुद्धि, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। सो पहले लाइन में ये गुणों का वर्णन हुआ है। तो बुद्धि का क्या अर्थ होता है, तो सही क्या बोलते हैं हिंदी में कि बुद्धि का निरीक्षण विवेक करने वाला शक्ति, और ज्ञान का निरीक्षण, तो ये तो पूरा नहीं है अनुवाद है ना। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, पूरा है वो हिंदी
अलग ही।
दक्षिण नॉट हैपन ना। तो वस्तुओं को उनके या चीजों को, कोई विषय को उनके सही मायने में विश्लेषण करना, उसको बुद्धि कहते हैं। सो ये अर्थ है। फिर उसके बाद में ज्ञानम। सो हम लोगों ने पहले ज्ञान का परिभाषा चर्चा की है ना। ज्ञान क्या होता है हम लोग पहले चर्चा किया ना, दूसरे दूसरे अध्याय में ही चर्चा किया ना हम लोगों ने। पहले इसका ही वर्णन करना शुरू करते हैं, जड़ और चेतन के बीच में भेद, या जड़ चेतन और दोनों को नियंत्रण करने वाले उनके उनके ज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ये कहाँ से आ गए परिभाषा बताइए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद् यो व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। मेरे मत के अनुसार ज्ञान क्या है, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर, क्षेत्रज्ञयोर, यो मतलब दो है, बहुवचन है, एक भगवान है एक जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा अपने शरीर को, शरीर क्षेत्र है, मतलब मैटर स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, तो इसको ज्ञान कहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे आधुनिक आधुनिक शिक्षा में कोई ऐसे आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा और जड़ वस्तु इन दोनों को समझना ज्ञान है। तो भौतिक तत्वों के बारे में ही वो चर्चा कर रहे हैं, उनका ज्ञान सिर्फ भूमि रपो जल नल वायु में ही हो जाता है और कुछ नहीं। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उसको भी पूरी तरह से वो लोग समझते नहीं हैं, और जो मनोवैज्ञानिक लोग मन को वगैरह कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मन का स्रोत भगवान है करके उनको पता नहीं, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं, तो उनको भी पता नहीं पूरा। और शारीरिक अवस्थाओं को देखते हैं, कैसे अच्छी तरह से खाना है, कैसे अच्छी तरह से सोना है, कैसे अच्छी तरह से मैथुन करना है, कैसे अच्छी तरह से रक्षा करना है, इसका ज्ञान को ही आधुनिक विज्ञान आधुनिक शिक्षा में शिक्षक या विश्वविद्यालय में ये ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रभुपाद जी जब वो डॉक्टर बेनफोर्ड करके एक फिजिसिस्ट उनको मिलने के लिए आए, तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे थे आपका पूरा साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन। फिर उसने वो पूछा, चंद्रमा के ऊपर जाने का जो प्रगति किया हम लोग, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी आहार निद्रा में तो है ऐसा, वो सोना है, बोला प्रभु। दूसरे शब्दों में क्या है, समय का व्यर्थ है, बस सो के हम लोग क्या करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं। ठीक है, शरीर की पालन पोषण के लिए जितना रेस्ट चाहिए, विश्रांति चाहिए, वो लेना चाहिए, लेकिन सो के लोग समय व्यर्थ करते हैं। वैसे ही चंद्रमा के ऊपर जाके समय व्यर्थ बर्बाद करके जा रहे हैं, उसके ऊपर संशोधन करके। तो इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन को ही देखभाल करता है और कुछ नहीं। सो जड़ विद्या मायार वैगो जीवे के खराए गादा, जीव को गदा बना देता है। वो है ना उसांग, क्या विद्यार विलासे कटाई नुखाल परम साहसे आमी, पढ़ीते पढ़ीते बरस भड़िया, ऐसे लगते हैं। सो इसलिए ये जो ज्ञान है वो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन आत्मा को, जड़ को और उन दोनों को नियंत्रण करने वाले के ज्ञान ज्ञान जो है उसको परिपूर्ण कहते हैं। तो फिर असम्मोह, सो संशय और मोह से मुक्त होना। सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सिद्धांत बोलिया न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने के लिए आलसी नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, वन हु व्हेन वन इज नॉट हेजिटेंट एंड व्हेन अंडरस्टैंड्स ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी, है ना, वही सिद्धांत है। वो नॉट हेजिटेंट मीन्स आलसी नहीं है उसके लिए। सो जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है, बेटर वी डोंट रीड दिस हिंदी आज, झिझकता नहीं वो ज्ञान है क्या, असम्मोह है क्या? वन हु इज हेजिटेंट, वन वन इज नॉट हेजिटेंट एंड वेन ही अंडरस्टैंड्स द ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी can be achieved when one is not hesitant and when understands. Hesitant word is connected to understanding transcendental philosophy, right or not? It is connected or not? English, what do you think? Your English is good. You don't have English? Freedom from doubt and delusion can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Hesitant word is connected to transcendental philosophy?
Yeah, if he is not hesitant.
See, read this. Because this gives completely different meaning at all together actually. Jab manushya jijakta nahi aur divya darshan
ko... Literal meaning, hesitant.
Yeah, literal meaning is correct, but it should be linked to the sense. No, no. What is the meaning of that?
No.
My question is whether that is connected to hesitant is connected to understanding philosophy.
Yeah.
Means he is not hesitant. English, I want your understanding of English statement. So whether it is connected to hesitant, he is not hesitant about understanding philosophy. Like that it is?
One is not hesitant and understanding philosophy. So hesitant, what, it is not clear in this sentence.
Oh, that sentence also is not clear. Editors. Anyway, it's okay, whatever. So what I understand is, so when we try to understand the philosophy, so we'll become free from bewilderment. So sammoha, doubt and delusion. Moha, we understand, no? Moha means what? Bodily concept of life. Lamenting for shoka, lamenting, this is all result of moha it is. So therefore, asammoha means freedom from doubt. So basically Prabhupada is telling that nothing should be accepted blindly, everything should be accepted with care and caution. I say andhata se kuch bhi swikar nahi karna chahiye. Care and caution. तो सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए. आंख मूंद मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए. अच्छा है. तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में क्या है? परिप्रश्नेन, है ना? तो परिप्रश्नेन विनम्र पूर्वक प्रश्न करना चाहिए. तो प्रश्न भी ऐसे चुनौती पूर्वक नहीं होना चाहिए, विनम्र पूर्वक और समझने के लिए सद्धर्म प्रचार, हमें समझने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए. तो मतलब जब प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग ऐसे ही अंधता से उसको स्वीकार नहीं कर रहे उसका अर्थ, उसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग संशय और मोह से मुक्त हो जाएंगे, उसको असम्मोह कहते हैं. क्षमा, तो दूसरों के क्या अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए. ये भी महत्वपूर्ण है ना. ऐसे भी कहा जाता है क्षमा नहीं है तो दुनिया नहीं चल सकती है. इसका अर्थ क्या है, इस जगत में कोई भी किसी के प्रति अपराध किए बिना या है ना गलती किए बिना नहीं रह सकते. सो विदाउट फॉरगिवनेस वर्ल्ड विल नॉट रन. ये जो क्षमा है ये एक चीज है जो कलयुग में कम होते जाता है. आप देखते हैं ना समाज में लोग छोटे छोटे चीज के लिए इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं. ट्रेन में वगैरह चलते वक्त थोड़ा इसका उधर उधर हो गया, झगड़ा शुरू करना कर देते हैं. इतना झगड़ा करते हैं लोग. कोई कुछ से कुछ बोल दिया तो इतना झगड़ा करते हैं, है ना. एक क्षमा एक चीज है वो कम होते जा रहा है ना. आठ चीजों में से प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत बोलता है ना, कौन कौन सा है पता है, आठ चीज जो घटता जाता है. प्रभुपाद जी कहा करते थे घटता जाता है घटता जाता है घटता जाता है, गो ऑन रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग. ततश्चाणो दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नांक्षत्यायुर बलम स्मृति. ये बारह स्कंद में कलियुग के लक्षण बताए गए. तो क्षमा भी एक है उसमें आठ चीजों में, धार्मिकता, सत्यता, शौचता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मृति. ऐसे आठ चीज गठन होता. प्रभुपाद जी कहते हैं घटता है घटता है घटते घटते है घटते है घटते, गो ऑन रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग. ऐसे तो ये क्षमा भी एक है उसमें. सत्यम वो भी एक घटता जाता है उसमें बताया ना. तो सत्य का अर्थ होता है कि जो फैक्ट्स तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए. अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना चाहिए जो भी सत्य है. व्हाट्स हैपनिंग, तो इसके बारे में भगवान 17वें अध्याय में बोलते हैं कि वहां पर वो वो वाणी मन तथा शरीर की जो तपस्या है उसके बारे में वर्णन कर रहे थे. उस समय आ, ये वाणी की जो तपस्या है उसके बारे में भगवान बोलते हैं, दैट इज 17:14। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते सच्चे बाणे वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध कर्म न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है, ऐसे कहते हैं। ये वाणी की तपस्या है। तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बोलते हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को क्षुब्ध हो जाएगा। क्या अनुद्वेग कर्म वाक्य को नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, बोल सकते हैं वो भी गुड इंग्लिश हिंदी में, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उसने उस उनसे बोले तो बोले जो जिसके विद्यार्थी उनके उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले, यही वाणी की तपस्या है, ऐसे कहते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रियहितम च यत्। तो वो एक सामाजिक ये भी है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसे सत्य को बोलना चाहिए जो प्रिय है, प्रिय नहीं है तो वो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी उसको यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान भी ऐसे बोले थे, भगवान भी वहाँ पर सत्यम ब्रूयात प्रियम बोल रहे हैं 17वें अध्याय में, लेकिन प्रभुपाद जी उसको ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक प्रथा के अनुसार देख रहे हैं हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस श्लोकों को हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इस सोशल क्या बोलते हैं, सोशल सोशल बिहेवियर, तो ये प्रथा है किंतु यह सत्य नहीं है। भाजी बोलते दिस इज नॉट सत्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात इज नॉट सत्य, इट इज दैट मीन्स व्हाट प्रभुपाद इज रेफ्यूटिंग, दैट प्रभुपाद इज रेफ्यूटिंग व्हाट कृष्ण इज टेलिंग। एक्चुअली अनुद्वेगकरम वाक्यम सो वो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ही बोल रहे हैं उस श्लोक में। क्या प्रभुपाद जी उसको खंडन कर रहे हैं? नहीं खंडन कर रहे, क्योंकि वो एक नीचे सर का सत्य है, वो ठीक है, वो है, वो होना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत में या ऊंचे स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर एक ऊंचे स्तर पर वो लागू नहीं होता है, ऐसे कह रहे हैं उसका अर्थ। किंतु यह सत्य नहीं है, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिसे दूसरे लोगों समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है तो यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप लेकर लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत है ना जो ऐसे तथाकथित मायावादी उनको बहुत खंडन कर देते, वो ही इज अ रैस्कल ऐसे बोलते, तो कभी कभी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभुपाद जी किस लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, या जिनको हम सुना रहे हैं उनकी भलाई के लिए ऐसे लोगों को निंदा कर सकते हैं। सो अगला दमा, दमा शब्द का अर्थ है तो इंद्रियों को निग्रह करना या उनको विषय भोग में व्यर्थ नहीं लगना चाहिए। तो तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक है। हम लोग पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ में नहीं जाते हैं, है ना, दे गो इल टुगेदर, ऐसे जाते हैं। फिर दमा इंद्रियों को निग्रह करना होता है, फिर शमा क्या होता है, मन को निग्रह करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, उसको मन का संयम बोलते हैं। कभी कभी हमारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, उसको रोक देना चाहिए, अभी बस कुछ भगवान के बारे में सोचो, ऐसे उसको बोलना चाहिए। दूसरों के बारे में भी हम लोग बहुत सोचते हैं, है ना, ये दुनिया ऐसे ही चल रहा है, एक दूसरों के बारे में लोग बहुत कुछ कल्पना करते 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 ऐसे ही दुनिया चल रहा है। पति सोचती है पति का पत्नी का कोई और किसी के साथ संबंध है, पत्नी सोचती है पति का कैसे, ऐसे ही दुनिया बहुत संशयों के, ऐसे मन इतना भागता रहता है, वो भी सकता है वो ठीक है, लेकिन परीक्षित महाराज जब वो शमिक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने देखा वहाँ पर शमिक ऋषि बैठे थे, वो ध्यान में बैठे थे, वो समाधि में थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या सोचा, ये मुझे नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा समाधि में बैठने का नाटक कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने सोचा, इसलिए गुस्से होकर वो क्या कर दिया, ऐसे मरा हुआ सांप को उनके ऊपर डाल दिया, उसके कारण उनको श्राप मिल गया, है ना। तो ऐसे सोचना, वो मन से ऐसे सोचा उन्होंने, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मन को ऐसे सोचने के लिए ऐसे ही उसको हमें नहीं अनुमति नहीं देना चाहिए, एक समय पर उसको रोक देना चाहिए, अभी बस अभी भगवान के बारे में चिंतन करो, नाम 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 सुनो, ऐसे करना चाहिए, उसको क्षमा कहते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं लोग धन अर्जन करने के लिए चिंतन में सारा समय गवाएं, उस समय पर ये विशेष करके मुंबई में बहुत सारा ये स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ उस समय पर, उसमें जो लोग हमेशा मन को क्या करते हैं, सो कैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग धन को लगाए इन्वेस्ट करें, कैसे और प्रॉफिट करें, इसको चिंतन करते करते ही समय चला जाता है, दिन और जीवन चला जाता है। यहाँ पर बोल रहे मन का उपयोग, मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए, यह चिंतन शक्ति के दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किए जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र क्या है, शास्त्र मर्मज्ञ साधु पुरुषों गुरुओं तथा महान विचारों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुकम है। तो प्रभुपाद ये दोनों मिलाकर बोल रहे कि लोग ऐसे मन को ऐसे उपयोग करते हैं और वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारा प्लान बनाते हैं, लेकिन ये वास्तव में हम लोगों को क्या करना चाहिए, सो मेनी मिस्टेक्स माय गॉड, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो ये मन, द पावर ऑफ थॉट, मन क्या करता है, सोचता है ना, वो जो सोते सोचने का शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए, द पावर ऑफ थॉट शुड बी डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद पर्सन्स हु आर अथॉरिटीज इन स्क्रिप्चर्स सेंटली पर्सन्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर एंड दोज हु आर हुज थिंकिंग इज हाईली डेवलप्ड, उनके संग में हमारे विचारों को हमें बनाना चाहिए। सो विचार कैसे बनाना चाहिए, इनके संगति में जो शास्त्रों में अधिकारी है और बहुत ही संत है और आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिनके जो सोच विचार है बहुत ही प्रगतिशील हुआ है, उनके संग में हमारे विचार को हमें बढ़ाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें बता रहे प्रभुपाद, है ना। जैसे हम लोग उन लोगों का संग करते हैं, हमारा विचार भी क्या है, बढ़ते हैं, हमारे विचार भी बहुत प्रगति करते हैं, हमारे विचारों का विकास होता है। जब हम लोग ऐसे मूर्खों का संग करते हैं, मूर्खों के संग में रहते हैं, गधे जैसे लोगों के संग में, तो क्या रहेगा, हमारा मन भी विचार भी गधे जैसे हो जाए, है ना। पूरा दुनिया ऐसे ही चल रहा है, तो सभी के लोगों के आजकल समाज में क्या हो रहा है पता है, सभी के लोगों के विचार को टेलीविजन और मीडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको बना रहा है, विचारों को बना रहा है। वन आइड गुरु बोलते हैं इसको, टेलीविजन को। तो आपके विचार, जो विचार शक्ति जो है, उसका विकास को क्या कर देते हैं वो लोग, सीमित कर देते हैं उसको। तो ये और शिक्षण में भी ऐसा ही होता है, इसी को ही ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, है ना। तो आरंभ से ही उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका विचार उनको कभी विकास होने के लिए बढ़ावा नहीं मिलता है। तो सिर्फ आजकल देखिए लोग क्या, किसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में, इससे बढ़कर कोई विचार है क्या उनको, कोई आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जीवन है, हम पशु से भी श्रेष्ठ है, उसके बारे में किसी को विचार नहीं है। तो ये सब बहुत क्षमा में आता है, क्या है, क्षम भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह और उसके बाद सुख। तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा, इस जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है, ऐसे उनको पूछा। तो भक्तों से दूर जाना वो सबसे बड़ा दुख है, या भक्ति से दूर जाना वो सबसे बड़ा दुख है। तो वैसे ही सुख और दुख यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है, या ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल कारक है वो ज्ञान है या सुख है, और जो हम लोग ऐसे कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं जो दुख का कारण बन जाता है उसको दुख कहते हैं। और उसके बाद बवा मतलब जन्म। सो जन्म तो किसका होता है, आत्मा का होता है, शरीर का होता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वो भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है वो, या मृत्यु नहीं होता है। तो इसके बारे में है चर्चा हो चुका है पहले से। तो भय, उसके आगे तो भय अलग अलग जगह पर वर्णन आता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भविष्य के बारे में चिंता से भय उद्भूत होता है। तो कृष्ण भावनामृत में जो होते हैं वो लोग भयभीत नहीं होते, क्योंकि कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने की प्रति आश्वस्त रहता है, फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वतो उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने और कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहे, इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त हो जाएंगे रहेंगे। यहाँ पर अगले जीवन में क्या होगा, क्या बोलते हैं, किंतु अन्य लोग भविष्य में विषय में सोचते रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। दिस इज अगले जीवन और इस जीवन के आगे विकास, व्हाट इज दैट इन इंग्लिश, इस अगले जीवन मतलब ये गलत अर्थ होता है ना, क्योंकि आजकल के लोगों को अगले जीवन के बारे में तो पता नहीं है। सो वरिंग अबाउट फ्यूचर इज फ्यूचर, सिर्फ भविष्य, ऐसे लोग बहुत भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं ना, है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, इतना बहुत सारे गलत अर्थ बोलते हैं, इट डजंट मेक सेंस, नो वन विल रिलेट टू दिस। ठीक है, भारत में हिंदी के अनुयायी वो लोग सब जानते हैं कि अगला जीवन है करके, राइट, जरूरी नहीं ना आजकल। इट्स देयर, हाँ वही कहाँ पढ़ रहे थे, या सही है। तो उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता अगले जीवन के क्या होगा करके, फलस्वरूप निरंतर चिंताग्रस्त रहते। तो लोगों को पता नहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु के अंत में वो भयभीत रहते हैं अगले जीवन के बारे में, आगे क्या होगा हमारा, ऐसा इसका अर्थ आगे क्या होगा उसके बारे में। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में और विस्तार से कह रहे हैं, भयम द्वितीया विनिवेश तस्यात्, भय तो हमारे माया पाश के में फंस जाने से उत्पन्न होता है। भयम द्वितीया विनिवेश तस्यात्, जब हम लोग भगवान से अलग हो जाते हैं तब भय उत्पन्न हो जाता है। या दूसरे शब्दों में, भगवान को छोड़कर अन्य कुछ चीज़ है इस जगत में, उसको उससे भय जागृत हो जाता है। तो यह सब भय का कारण है, इसलिए हम लोग अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं तो ये भय से, या कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं तो अभयम हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अभय चरणार अविंद, उनको उनके गुरु महाराज ने क्या नाम दिया, अभय चरणार अविंद। वो भगवान के चरण कमलों को आश्रय ग्रहण करने के कारण अभय है, उनको अभय चरणारविंद, या अभय प्रदान करने वाले चरण है, ऐसे कहते हैं। सो बहुत बार शास्त्रों में ये वर्णन आता है ना, जो मूर्तिमान भय भी भगवान से भयभीत है। उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, बीषास्माद् वातः पवते, बीषो देति सूर्यः, बीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। तो अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और मृत्यु सब भगवान से भयभीत है, मूर्तिमान भय भी भयभीत है। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचा या जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रों, परोपकारी आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकले, क्योंकि राजनीतिज्ञों और परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती है। जानते हैं किसके बारे में बता रहे हैं, मोहनदास करमचंद्र गांधी के बारे में बता रहे हैं। उनके नतीजा कुछ नहीं, आप जानते हैं ना, जो भारत के इतिहास पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि हिंसा से अहिंसा का अनुगमन हुआ, मतलब अहिंसा, अहिंसा के पीछे पीछे हिंसा भी हुआ। तो क्यों होता है ऐसे, दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि नहीं होते और वे नहीं जानते वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसे कोई संस्था या संघ मनुष्य को एक प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। तो हिंसा का अर्थ क्या होता है? दूसरों को तकलीफ में डालना या उनको तकलीफ देना, उसको हिंसा कहते हैं। तो अहिंसा मतलब ऐसे तकलीफ नहीं देना, तकलीफ में नहीं डालना, उसको अहिंसा कहते हैं। इस भौतिक जगत में क्या है उसका अर्थ है? ये परिभाषा लेंगे हिंसा और अहिंसा को, तो क्या हो जाता है? जो दूसरों को नेतृत्व कर रहे हैं वो इन लोगों को, जिन जो लोग उनके ऊपर निर्भर है उन लोगों को आत्म साक्षात्कार के बारे में जानकारी नहीं देंगे और या उनको भगवान के भक्ति में लेकर नहीं आएंगे, उनको मृत्यु से नहीं बचाएंगे, तो वे हिंसा कर रहे हैं। दिस इज वायलेंस। तो प्रभुपाद जी को 1992 में जब प्रभुपाद जी झांसी में थे उनको बुलाया। कौन बुलाया? गांधी जयंती मनाते हैं ना, जयंती शब्द तो भगवान को ही उपयोग होता है। उस दिन अहिंसा के बारे में बोलने के लिए भगवान प्रभुपाद जी को उन्होंने बुलाया, वो लोग गांधीवादी लोग। तो प्रभुपाद जी ने बताया, आप लोग क्या बकवास अहिंसा के बारे में बोल रहे हो, आप सब लोग हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जब तक हम लोग ये ज्ञान नहीं देते हैं कैसे मृत्यु से मुक्त हो, तो सबको हिंसा कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली लीडर्स जो नेता होते हैं। तो दूसरों को ये ज्ञान नहीं, या ज्ञान देना चाहिए, इसको जीव हिंसा कहते हैं, आत्मा का हिंसा। इसके कारण सभी हिंसा होते हैं इस जगत में। तो इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान करते हैं, इतिहास में हम लोगों ने बहुत सारे असुरों को देखा है जो बहुत सारा हिंसा और अत्याचार किए, वो लोग आधुनिक इतिहास में भी देखते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन वगैरह। लेकिन उनसे भी बढ़कर हिंसा करने वाले वो लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में पथभ्रष्ट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं धर्म के पथ पर, तो वो सबसे बड़ा हिंसक है। वो चीज़ यहाँ पर बता रहे, मानव देह आत्म साक्षात्कार के लिए हेतु मिले, अतः ऐसे कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति के प्रोत्साहन न हो, मानव देह की प्रति हिंसा करने वाला है, जिनसे मनुष्य को भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही हिंसा है ना। बहुत खड़क बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी, तो ये सब हिंसा है। सब श्री श्री अम्मा, सब गांधी, सब लोग क्या है, वो लोग हिंसा के ऊपर वास्तव में जीवात्मा के ऊपर। तो समता राग और द्वेष से मुक्ति ज्योतित होती है। तो राग और अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है ना तो अत्यधिक द्वेष। राग और द्वेष ट्रांसलेटेड अटैचमेंट एंड एवर्शन। एवर्शन मतलब इट इज़ नॉट द्वेष ना, ईर्षा, इट इज़ नॉट द्वेष ना, एवर्शन। एवर्शन मीन्स वी वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट। तो इसको आसक्ति और अनासक्ति अच्छा रहता है। तो समता का अर्थ होता है आसक्ति और अनासक्ति से समभाव। हमने बार बार ये बताया, भक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए बताइए? शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? श्रद्धा और अभ्यास। अति आसक्ति और अनासक्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए, वही चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं। इस भौतिक जगत को आसक्ति और अनासक्ति से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करे, यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है, उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है, है ना। कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने के लिए जो भी जरूरी है वो सब करना चाहिए। तुष्टि सो तुष्टि मतलब वो ज़्यादा इकट्ठा करना नहीं चाहिए ऐसे बोलते तो उसको अत्याहार भी कहते हैं ना। तो अत्याहार से तुष्टि नहीं मिलता है, हम लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। क्यों ऐसे होता है, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि मिलना चाहिए ना, बहुत प्राप्त हो गया करके, है ना। काम और बढ़ता रहता है या जब हम शुद्ध जितना हम लोग हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोशिश करेंगे उतना लोभ बढ़ जाता है, और प्राप्त करना और प्राप्त करना। सो ऐसे चीज़ों को ईशावाश्रमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भूंजिता मा व्रद कस्य स्विद्यनम्। तपस का अर्थ है तपस्या, ये भी बहुत बड़ा विषय है ना तपस्या। तपो दिव्यं पुत्रकायेन शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनंतम्। तपस्या का अर्थ होता है जो हम लोग स्वेच्छा से अपने शरीर और मन को क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं ऊंचे उद्देश्य के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। तो यहाँ पर वो तपस्या कैसे करना चाहिए, अपने मन गणित ढंग से नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र में जो विधि विधान बताए गए उसके अनुसार ये तपस्या करना चाहिए। ऐसे सो तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष करके हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी प्रातःकाल में यहाँ पर प्रभुपाद विधान वेदों में वर्णित विधि विधानों को पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने में का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प के कारण उसे ऐसी शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या हो जाता है, हम लोग हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जो भी हम लोग थोड़ा बहुत तपस्या करने की शक्ति है वो भी चला जाता है। तपस्या करने के लिए दो चीज़ों का जरूरत होता है, एक है शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति चाहिए और मानसिक दृढ़ता चाहिए। तो ये चीज़ कर है तो हम लोग तपस्या कर सकते हैं, नहीं तो तपस्या नहीं कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए इसको हमेशा, हाँ ठीक है। तो भगवद गीता में किंतु व्यर्थ अथवा वैदिक आदेश प्रतिकूल उपवास करने आवश्यकता नहीं, उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। बाद में यहाँ पर वर्णन आएगा भगवद गीता में तीन प्रकार के तपस्या, सत्व रज तमो गुण में ना? तो ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तपस्या करते हैं ना, जैसे वो अन्ना हजारे कर रहा था या हीरो बन गए थोड़ा समय के लिए, है ना। बहुत बार ऐसे लोग हीरो बन जाते हैं। वो कौन है, रामदेव बाबा भी करने के लिए कोशिश कर रहा था वो एक नंबर का मूर्ख। तो ऐसे होता है। तो हमारा गांधी जी भी ने किया था, उसको तामसी उपवास कहा गया। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ऐसा लगता है अभी गांधी का हम लेंगे, उनका तपस्या का, उन्होंने भी बहुत सारे फास्टिंग किया। हम लोग पढ़ते थे वो इतिहास में, तो अंग्रेजी सरकार हिल गया उनकी तपस्या को देखकर, ऐसे है ना, ऐसा लिखता है इतिहासकार। तो हम लोग तुलना करेंगे, वो आप बोल रहे हैं ऐसे हमारे देश को स्वतंत्रता मिल गया, ऐसे 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 बोलते हैं, इसके बजाय हम आपके आचार्यों ने क्या किया, वो लोग अपना क्या भक्ति करते चले गए, प्रचार करते चले गए, कुछ देश के लिए कुछ किया क्या हुआ? आप नतीजा देखेंगे तो क्या हो गया, देश का स्वतंत्रता तो हो गया लेकिन उसका नतीजा क्या हो गया? अभी क्या है, भारत वाले सबसे बड़ा गुलाम है अमेरिका का। जब स्वतंत्र नहीं थे तब उतना तो नहीं था, कुछ तो स्वतंत्रता तो था एक्चुअली, सबसे एक नंबर का गुलाम बन गया अभी, है ना। सभी ये मल्टीनेशनल कंपनी आके सब को भी ऐसे लिखा था एक्चुअली, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही था, अभी कितने सारे कंपनी आ गए ऐसे, है ना, सब गुलाम हो गए ये लोग। अप्रत्यक्ष रूप से देश को बेच दिया ये लोग, सभी राजा लोग, राजनीतिज्ञ लोग। ये क्या स्वतंत्रता है? तो वहाँ पर डॉलर में कुछ गड़बड़ हो गया, ये लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, ऐसे ऐसे गुलामगिरी, ऐसे असल स्वतंत्रता क्या है, है ना। आपको नेपाल में है, आपको चिंता नहीं है ना, वहाँ पर भी ऐसे होता है। भारत और नेपाल में कुछ अंतर नहीं है, लेता है
ना,
ठीक है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे एनीवे, तो सब तामसी तपस्या है। किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वो समुन्नत बनाने वाला है, इसलिए तो हमें रजोगुण में तमोगुण में ऐसे तपस्या नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। तो हमारे आचार्य लोग धीरे 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 प्रचार कर रहे हैं, इसके कारण आध्यात्मिक संस्कृति जो है वो बढ़ रहा है, सतोगुण का प्रभाव होएगा। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किए गए उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक कि दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपने आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह कृष्ण भावनामृत में किया गया है। आजकल ये किसी को पता नहीं कैसे बचा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए करके। 50% विरलाई कोई एक वक्त भी होंगे जो 50%, लेकिन कुछ वक्त है एक्चुअली, कुछ है बहुत विरला। एक वक्त के बारे में पढ़ा था, वो हमेशा 50% वो देते हैं एक वक्त के बारे में, 15 साल में एक वक्त के बारे में हमने पढ़ा। और वो मुश्किल है, आजकल के जो इकोनॉमिक्स लॉ है, आजकल के टैक्सेशन वगैरह जो है ना, तो उसके आधार पर लेंगे तो वो मुश्किल होगा, चिंता नहीं। और आजकल बहुत सारे इतने ज़रूरतें बढ़ गए हैं जीवन के, तो आप शहर में रहेंगे तो आपको कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए रहने के लिए, तो उसके बिना हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे करेंगे वो लोग, है ना।
एक टेम्पल में एक हो जाए
बहुत काफ़ी हो गया, ऐसे बोल रहे, कम से कम एक तो मिल जाए ऐसे बोल रहे। हुँ। और उसके बाद क्या है, सो तुष्टि चैरिटी, और इसके बारे में विस्तार से कह रहे हैं चैरिटी, दान किसको दिया गया था, बाद में भी आएगा पात्र को देकर दान देना चाहिए, विशेष करके वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों को और सन्यासियों को दान दिया जाता था, क्योंकि वो विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में व्यस्त रहते हैं या ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है उसको अनुशीलन करने में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ये जीवनी को अर्जित करने के लिए समय नहीं रहता है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए। और समाज में ऐसे एक वर्ग होना चाहिए, कभी कभी लोग ब्रह्मचारियों का निंदा करते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, समाज के ऊपर ऐसे बाहर है, कुछ काम करते हैं ना, ये लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको पता नहीं मूर्खों को कि सर नहीं है तो समाज में क्या हो जाएगा, या शरीर में सर नहीं है तो कैसे होगा, बुद्धि नहीं है सर नहीं है तो कैसे होगा, पथभ्रष्ट शरीर सही रास्ते में नहीं जाएगा। तो वैसे ही समाज, ब्राह्मण क्या होते हैं, समाज को मार्गदर्शन करते हैं, वो समाज का सर के समान है, वो सही दिशा में उसको लेकर जाते हैं। ऐसे सर नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाए, आज का स्थिति ऐसे कोई ब्राह्मण एक वर्ग ही नहीं है। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन में ऐसे एक समाज के लिए एक ब्राह्मण वर्ग का सृष्टि करे, तो वो इस्कॉन का उद्देश्य था, प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य है, हम ब्राह्मण वर्ग को सृष्टि करना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें इसलिए ये शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए और समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं जो सन्यासी होते हैं वो लोग भी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन धन अर्जन करने के लिए नहीं, प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया ना, सिर्फ वो गृहस्थ के घर में कितने समय तक रहते हैं, दूध दोहन करने के समय तक रहते थे, ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे, ज़्यादा समय तक नहीं रहना रहा तो क्या हो जाएगा, गृहस्थों के जो चीज़ों से आसक्ति हो जाए, तो उनको प्रचार करके दूध लेकर तुरंत निकल जाना, बस तो ये खा रहे। तो शिला प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक ब्राह्मण जो ज्योतिष था चैतन्य महाप्रभु के घर में आते, जब वो गृहस्थ थे तो तुरंत ही उनको उन्होंने क्या कर दिया, बहुत अच्छी तरह से अंदर बुला के उनका बहुत अच्छा सेवा किया, हो हालांकि गरीब है लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, नहीं वो ब्राह्मण गरीब है फिर भी उनको अच्छी तरह से सेवा करते हैं। शिला प्रभुपाद उस तात्पर्य में ब्राह्मणों का महत्व को वर्णन करते हैं, पहले जमाने में ब्राह्मण क्या क्या हुआ करते थे, ये चैतन्य चरितामृत के 17वें अध्याय के 130 श्लोक नंबर, ब्राह्मण क्या करते थे, वो लोग ज्योतिष जानते थे, वो लोग जो घर में जो भी आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए या ऐसे संस्कार होना चाहिए उसका वो जानते थे, वो उसका शुभ मुहूर्त है ये सब मार्गदर्शन करते थे, लोगों को ऐसे धार्मिक जीवन में प्रगति कराते थे। प्रभुपाद जी बोलते उसके साथ साथ क्या वो करते थे, वो छोटे मोटे जो जो रोग भी है उसको सुलझा देते थे और कोई दंड नहीं लेते थे, ये सब के लिए वो कोई दंड नहीं लेते, तो वो ब्राह्मण नहीं है, जो दंड लेता है वो ब्राह्मण नहीं। सो भीख मांग के जो भी मिल जाता है या स्व इच्छा से लोग जो भी मिल दे देते उससे वो संतुष्ट हो जाते, और ज़्यादा मिल गया उनके पास ज़्यादा हो गया तो उसको भी वो वितरण कर देते थे, उसको वो दान में दे देते थे। तो उनका सरल जीवन, ब्राह्मण मतलब कल के बारे में वो सोचेगा नहीं, कल क्या कहूँगा मैं उसके बारे में सोचेगा नहीं, वो ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं कि अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए, पोत्रों के लिए सब इकट्ठा करके 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 रखना, वो ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण मतलब बहुत ही सरल जीवन। सो ये ब्राह्मण का लक्षण, वो हम सुबह बता, कल सुबह या कल बता रहे राजा कृष्णचंद्र का राज्य में ब्राह्मण के बारे में, तो कैसे ब्राह्मण थे वो। वो राजा ने उनको बताया, आप पूछ लीजिए हमसे, आप इतना गरीब है। मैं गरीब नहीं हूँ बोलते, मेरे शिष्य कुछ लेकर आते हैं, कुछ चावल यू नो भीख मांग कर आते हैं, और मेरा पत्नी कुछ पत्ता पीछे से डाल के कुछ बना के हम लोग अच्छी तरह से खाते हैं उसको ऐसे। तो ये ब्राह्मण के लक्षण, सरल। तो ऐसे ब्राह्मण बहुत समाज के लिए बहुत सहायक होते हैं। प्रभुपाद जी, आजकल अस्पताल में कितने सारा बिल भरना पड़ता है, तो इसलिए ब्राह्मण है। तो पहले जमाने में स्वास्थ्य, अन्न और शिक्षा, ये तीनों चीज़ों को, न्याय भी है ना, न्याय, तो ये तीनों चीज़, तो ये तीनों चीज़ मुफ्त में मिलते थे, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा। तो ये अभी तीनों चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा यू नो बिजनेस सेंटर्स है ये, विश्वविद्यालय, न्यायालय और अस्पताल, सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर्स है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतने सारे ये थीव्स एंड रोग्स बोलते हैं उनको, ये चोर लुटेरा लोगों को, लोगों से, मासूम लोगों को बचाने के लिए हमें ब्राह्मण वर्ग को सृष्टि करना चाहिए, ऐसे बोलते। उसके बाद में इसलिए बोलते हैं वो अपने इस्कॉन के, इस्कॉन के जो नेता नेतृत्व करते हैं उन भक्तों को वो सुझाव देते हैं, हमारे जो कृष्ण भावनामृत के जो लीडर्स है, वो दलास में जो हमारा गुरुकुल है, जहाँ पर बच्चों को ब्राह्मण बना के बनाने बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस समय वही एक ही स्कूल था, गुरुकुल था, तो उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे बोलते, ताकि हम लोग समाज को ऐसे चोर लुटेरों से रक्षा कर सके, ऐसे है ना, ऐसा ही होता है ना, अस्पताल मतलब ऐसे होता है ना, हो कि नहीं। तो ऐसे
जूस लेते हैं,
या ही इज ऑल्सो डॉक्टर, ही नोस, और उनको ऐसे ही प्रशिक्षण दिया जाता है। They give some boys told me, because I was teaching in MBBS college, some boys told me they train them in such a way only, actually the trial and error medicine देके देके वापिस आना चाहिए, बार 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 उनके पास वापिस आना चाहिए, ताकि और ज़्यादा 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 ज़्यादा, है ना। तो ये सब चलता है इतना। एक हाल ही में एक वक्त बता रहे थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, ताकि मैं सभी काम को बंद करके थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा लग जाऊँ, ऐसे उन्होंने, उनको पत्नी को ऐसा एक रोग हो गया, जितना भी पैसा था वो सब चला गया, वो तुरंत ही, तो बोल रहे थे बहुत दुखी हो गए थे, तो अस्पताल के बारे में सब बोल रहे थे, बहुत ही ऐसे होता है, इसलिए ये सब ब्राह्मण जरूरत है। तो उनको क्या देना चाहिए, दान उनको दिया जाता है, और पहले ज़माने में ब्राह्मण बोझ हुआ करता था, उनको भोजन देना, उनको बुला के भोजन, उनका सेवा करना होता था। तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं दरिद्र नारायण बोझ नहीं, ब्राह्मण बोझ बोलते हैं। तो ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद यशस, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा फेम क्या है, ऐसे रामानंद राय को प्रश्न पूछा था। सबसे बड़ा यश क्या है? भगवान का भक्त बनना ही सबसे बड़ा यश है बोलते हैं। ये वास्तविक है ना। आज भी हम भगवान के भक्तों को क्या करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको गुणगान करते हैं। प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, कितने ध्रुव महाराज जो करोड़ों 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 साल पहले थे, लेकिन जो भी भौतिक समाज में जो यशस्वी हुए उनका कोई स्मरण करते हैं क्या? कोई किसी को स्मरण करते हैं? सब भूल जाते हैं, सब भूल गए, कौन जाएंगे जानेंगे उनके बारे में। तो वास्तविक यश क्या है? भगवान का भक्त बनना। कभी कभी हम बोलते हैं जब कोई ब्रह्मचारी ज्वाइन आश्रम में ज्वाइन होता है तो उनका माता पिता को बहुत दुख लग जाता है, ठोस लग जाता है, विशेष करके प्रतिष्ठा का ठोस लग जाता है, क्योंकि बचपन से ही अपने बच्चों को बहुत गुणगान करते हैं अपने सगे संबंधियों में, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा नाम करेगा करके तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, तुरंत ये बाबा जी बन गया तो इतना टोस लग जाता है उनको, इतना टोस लग जाता है फिर हम उनको बताते ये देखो बहुत बड़ा प्रचारक बन जाएगा, पूरा दुनिया में प्रचार करेगा, आपको बहुत गुणगान होगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, फिर थोड़ा संतुष्टि मिल तो ऐसे होता है ठीक है। आजकल क्या है, किसको क्या क्या, ये इंजीनियर डॉक्टर क्यों कौन देखते हैं उनको, कितने सारे सबको डिग्री है, सबको इंजीनियर, सभी लोग इंजीनियर बनता है ना। या वो क्या है, कौन उसका परवाह करता है। इतने सारे, कोई एक भक्त बोल रहे थे उनके पिताजी के कंपनी में इंजीनियर को 5,000 या 7,000 तनख्वाह देते हैं बोलते हमारा मनोहर हंस रहा है ना क्या है फायदा उनका है ना। इसलिए और इतने सारे इंजीनियर डॉक्टर बना के क्या करना है, भक्तों को प्रचार करना, प्रचारकों को बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी प्रचारकों को बनाना चाहते थे, उनको ऐसे प्रशिक्षण देना चाहते थे कृष्ण भक्ति का। सो ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है तो उसे कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपना अंतर विकास, अंतर में विकास करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेते हैं। हम जो कुछ भी इच्छा या अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारे वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। इसमें कौन कौन से बुरे और अच्छे गुण हैं बताइए। कौन कौन से अच्छे गुण हैं? प्रभुपाद जी सभी वो कृष्ण भावनामृत के संबंध में वर्णन कर देते हैं, इसलिए सभी अच्छे हैं। जन्म अच्छा नहीं है ना, है कि नहीं? जन्म अच्छा नहीं है। भव मतलब जन्म बोलते हैं ना। और क्या है, तुष्टि ठीक है, सब कुछ भगवान के, भगवान से ही आता है। यहाँ पर तो कुछ ही चीज़ों का वर्णन किया, इस जगत में बहुत सारे बुरे गुण भी हैं ना, बहुत सारे गुण, बुरे गुण भी हैं, अच्छे गुण और बुरे गुण आप लिस्ट करते जाइए, सब कुछ भगवान से ही आता है। फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्यों भगवान इसको ऐसे बनाते हैं। ये प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं कि वो सिर्फ, यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित है, किंतु अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से उत्पन्न होती हैं। उनको ऐसे भिन्न रूप में या दूसरे शब्दों में उसको ऐसे महसूस किया जाता है भगवान से अलग हो गए तो जो तथाकथित अच्छे गुण भी हैं वो बुरे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अहिंसा का उदाहरण, तो अहिंसा से हिंसा शुरू हो गया है ना। तो श्लोक क्रमांक 6, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावमान स जाता ये श्याम लोका इमाम प्रजा। सप्तर्षि गण तथा उसमें भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यहाँ पर भगवान ब्रह्मांड के जो सृष्टि के बारे में या जो जनसंख्या कैसे बढ़ा उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वो सब उनसे आते हैं। पहले कौन आते हैं? ये 25 लोग आते हैं। इस श्लोक में 25 लोगों का वर्णन हुआ है। महर्षया सप्त पूर्वे, सप्त ऋषि जो होते हैं उनके बारे में, चत्वार मनस्वस्थतः और चार कुमार, 11 हो गए, और मनवस्थता मतलब 14 मनु होते हैं, तो कुल मिलाकर 25 हो गए। इन सब के द्वारा अलग अलग लोक में जितने भी जीव है उनका सृष्टि हो गए। तो ऐसे ब्रह्मांड का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है। तो असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों क्या हुआ, 2500 लिखा है। एनीवे ठीक है। तो ऐसे सभी जीवों का सृष्टि होता है। तो पहले वास्तव में किनका हुआ सृष्टि हो गया? ब्रह्मा जी का सृष्टि हो गया, और ब्रह्मा जी तपस्या करके सृष्टि करने के लिए और उन्होंने शक्ति प्राप्त किया, उनके द्वारा सभी अन्य जीवों का सृष्टि हो गया, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय का जन्म हो गया। ये मनुलोक क्षत्रिय होते हैं, राजर्षि होते हैं वो लोग, और ये चार कुमार सप्तऋषि वगैरह वो ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो पहले ब्राह्मणों का सृष्टि होता है, फिर क्षत्रियों का सृष्टि होता है। तो प्रभुपाद अंत में बोलते हैं, ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद्गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। अर्जुन उनको ऐसे गुणगान कर रहे हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अश्वस्त है वह मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः, विभूति योगम च, इस अध्याय का शीर्षक इस श्लोक से आता है, क्योंकि इस श्लोक में क्या बताया गया? विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। संस्कृत वो शीर्षक क्या है? विभूति योग उसका नाम है। तो ये ताम विभूति योगम छ मम यो व्यक्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानते हैं सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो भगवान की ऐश्वर्यों को और शक्तियों को तत्वतः जानने का क्या नतीजा फल मिलता है उसको भगवान यहाँ पर बोल रहे, वो तो उसका तुरंत क्या हो जाता है? सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, वो लोग मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। या दूसरे शब्दों में, हम लोग ऐसे अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए या अनन्य भक्ति में लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शक्ति और ऐश्वर्यों को समझना चाहिए, तो तभी हम लोग अनन्य भक्ति में लग जाएंगे, है ना। नहीं तो हम लोग भक्ति करेंगे, मिश्र भक्ति करेंगे या ऐसे कुछ करेंगे, हाँ तो या भक्ति भी नहीं करेंगे, या भक्ति में हमारा कोई प्रगति भी नहीं होगा। तो इसलिए ये अध्याय को भी हमें गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, क्या क्योंकि यहाँ पर भगवान के और विशेष शक्ति और ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। तो ये इसका फल है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि के चरम परिणति भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति अस्वस्थ नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किस प्रकार महान है। गॉड इज ग्रेट बट हाउ गॉड इज ग्रेट दे डू नॉट नो, कैसे महान है उनको पता नहीं रहता। तो इसलिए भगवान की महानता को हम लोग जान लेंगे तो हम लोग अनन्य भक्ति में लग जाएंगे। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। सो इसमें कोई संशय नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। आप भगवान के बारे में जान लिया ना, उनके शरण जाए बिना हम रह ही नहीं सकते। अच्छी बात है ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब अध्ययन करना चाहिए, कितना महान है भगवान, कैसे उनके ऐश्वर्य है, कैसे उनके शक्तियाँ हैं, ये सब जानना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग बहुत हमें भक्ति में इतना तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, हम शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ, तो ये सब समझना चाहिए। तो भगवान के ऐश्वर्य को ठीक, या ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद्गीता, भगवत श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चार कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है और वे सब भगवान कृष्ण के से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह। तो ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण के को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्ष भाव न भरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। उपेक्ष भाव न रखे, वो बता रहे थे ना, सिद्धांत भूलिया न करा आलस, यह है ते कृष्ण लागे सदृढ़ मानस। सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग आलसी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझ लेंगे तो क्या हो जाता है, वो हमारे मन को कृष्ण में आसक्त बना देता है, जोड़ देता है, मन कृष्ण में लग जाता है। तो और आगे बताते हैं, ये सब उनको उनके ऐश्वर्यों को जानने का महत्व बता रहे भगवान। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावा समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या बलि भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण परम सत्य क्यों है इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो परम सत्य का एक लक्षण है समम बनम प्रॉपर, सब कुछ उनसे निकलता है, सब जन्मादेशयतः। तो वेदांत सूत्र में क्या बताया गया है, अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म में जिज्ञासा कीजिए, वो क्या है, परम सत्य क्या है, वो जन्मादेशयतः, वो सब कुछ उनसे निकलता है। जन्म आदि यस्यतः, जन्म आदि मतलब सृष्टि, पालन और विनाश, सब कुछ उनसे ही निकलता है, इसको जन्माद्यस्य कहते हैं। सो परम सत्य क्या होना चाहिए? वो सबका स्रोत होना चाहिए। सबका स्रोत मतलब उनका कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान सबका स्रोत है तो उनका कौन स्रोत है? तो उनका कोई स्रोत, जब हम लोग ऐसे परिभाषा देते हैं कि सब वही सबका स्रोत है, उसका अर्थ उनका कोई स्रोत नहीं होता। तो इसलिए भगवान अहम सर्वस्य प्रभो बोल रहे यहाँ पर इस श्लोक में, वो कह रहे हैं वही परम सत्य मैं हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझसे निकलता है, मुझसे सब कुछ उद्भूत है, ऐसे बोलते हैं मैं ही सबका कारण हूँ। इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारे क्या बोल रहे, तो पहले बोलते हैं जो तथाकथित टीकाकार है वे क्या कार है भगवद्गीता के ऊपर, जो भक्त ऐसे वेद का जो ज्ञान है सार है उसको समझ लिया तो वो भक्त ऐसे टीकाकार या व्याख्याओं से विचलित नहीं होते हैं। और वैदिक साहित्य में इसके इनके बारे में बहुत सारा दिया गया है कि भगवान कृष्ण कैसे सबका स्रोत है, यहाँ पर बहुत सारे वेद शास्त्रों से प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं ना। सो सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्म है, शिवा तथा अन्य समस्त देवताओं का स्रोत है। अथर्व वेद में सो गोपाल तपनी उपनिषद वो अथर्व वेद में आता है, यो ब्रह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदस्य गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्म को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है अतः पुरुषो य वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में आगे भी कहा गया है नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति जायते, नारायण इंद्रो जायते, नारायण अष्टवसवो जायते, नारायण एकादश रुद्र जायते, नारायण द्वादश आदित्य जायते। नारायण से ब्रह्म, आप जानते हैं ये सब साधारण, ब्रह्म का उत्पत्ति होता है, प्रजापति का उत्पत्ति होता है, इंद्र का उत्पत्ति होता है, अष्टवसुओं का, एकादश रुद्रम का उसे। और बाद में नारायण उपनिषद में ब्रह्मान्यो देवकी पुत्र है, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। एको वै नारायण आसीन ब्रह्मणो ईशानो नापो नाग्नि सो ना अग्नि समो नेमे ख्याव ध्याव पृथ्वी न निरीक्षण न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि था, अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद में यह कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए, अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य अहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानी तो मम माया विमोहितो। मैंने प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया किंतु वे मेरे माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण परो देवस्थ अस्माज्जातश्च तू तूर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवेद् देवः स च सर्वज्ञातागतः। नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझमें उत्पन्न हैं अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ पर बताया गया ये सब? चूंकि सारी वस्तुएं मुझ में उत्पन्न है, अतः सबों मेरे सबों का मूल कारण हूँ। इसी श्लोक में या सातवें अध्याय में भी ऐसे है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद्गीता के समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ये किन टीका के बारे में बता रहे हैं? हम लोग 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में चर्चा कर रहे थे ना ऐसे टीका के बारे में। मश्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् तस्माम् नित्यं तुष्यन्ति च। ये पिछले श्लोक से पिछले श्लोक ये श्लोक और आगे के और 11वें श्लोक ये सभी चार श्लोक क्या है? चतुश्लोकी भगवद्गीता। ये भगवद्गीता के सार है। ये चार श्लोक याद रखेंगे, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 10वें अध्याय के ये चतुश्लोक। जैसे भागवत में भी चतुश्लोकी भागवत है ना, वो चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को ये चार श्लोक बताए थे, उसके बाद में भागवत विस्तार हो गया। ऐसे वो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वां श्लोक से 36वां श्लोक वो चतुश्लोकी भागवत है। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भक्त लोगों का कार्य है, हमेशा उनके विचार में मग्न रहना। मच्चित्ता मद्गत प्राण, उनके प्राण पूरी तरह से भगवान को समर्पित रहते हैं। तो भागवत में एक जगह आता है कृष्णार्पित प्राण। नारद मुनि अपने शिष्य प्रहलाद को ही गुणगान कर रहे हैं। वो कैसे है? वो कृष्ण, उनका प्राण पूरा जीवन क्या है? भगवान कृष्ण को अर्पित हो गया था। तो ऐसे मद्गत प्राण, तो ऐसे कहते हैं बोधयंत परस्परम। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर ये बोध ये चर्चा करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। कथयंतश्च मामित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है। यहाँ पर तात्पर्य के अंत में बोलते हैं तो कि गीता और विशेष करके भागवत में श्रीमद् भागवत में भगवान के बारे में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो इसको भक्त लोग उसको चर्चा करने में अत्यंत आनंद लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये भागवत क्या है? सबसे अमल पुराण है। इसमें कोई दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है, सर्वोच्च ज्ञान है। ये भगवान की कथाओं से भरा हुआ है, तो वैष्णवानाम बहुत प्रिय है वैष्णवों के लिए। तो और अंत में प्रभुपाद बोल रहे, जो आत्म साक्षात्कार पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये कृष्ण कथा करने में या गीता भागवत को चर्चा करने में इतना आनंद लेते हैं जैसे एक तरुण तरुणी की संग में आनंद लेता है। ऐसे कहते एक सिर्फ तुलना है, क्योंकि वास्तव में तुलना नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक जगत में ये आनंद को बहुत सबसे ज़्यादा माना गया है, इसलिए हमें एक उसका झलक दिखाने के लिए या समझाने के लिए प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण दे रहे है ना। वास्तव में क्या है, कृष्ण भक्ति में जो आनंद मिलता है या कृष्ण कथा चर्चा करने में जो आनंद मिलता है, उससे हम लोग ऐसे आनंद से बहुत परे चले जाते हैं। नहीं तो आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, है ना? युवा युवा लोग क्यों बैठे हैं? वो भी आप लोग भी ऐसे धर्म नियम के संग में आनंद ले सकते थे, लेकिन आप सब लोगों को कृष्ण कथा सुनने में ज़्यादा आनंद आया है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारियों को विशेष करके भागवत से ऐसे कृष्ण कथा से विवाह कर लेना चाहिए, तभी वो जो आनंद है उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे, उसके परे चले जाएंगे, यही हमारा जीवन है, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसके बीच में और प्रॉपर विस्तार से वर्णन करते हैं। भक्ति की प्रारंभ अवस्था में सेवा ही में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो तब वे उसे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर वो जो आनंद भक्तों को मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये विषय बहुत प्रॉपर जी चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, किसको तुलना कर रहे हैं इसको, एक लता जब जा यू नो उसका बीज बोया जाता है वहाँ से आरंभ होके वो भगवान के धाम तक वो जाता है। तो दूसरे शब्दों में भक्ति को एक लता से तुलना किया गया है और लता वो बढ़ते 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 कहाँ जाता है, भगवान के धाम में पहुँच जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम लोग भक्ति में प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा स्थिति क्या हो जाता है, भगवान के बिना हम लोग कुछ नहीं रह सकते हैं। वो ऐसे मछली की तरह होता है हमारा स्थिति, जो जल से जल के बिना नहीं रह सकता है। तो उतना तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो रमन्ति च प्रसन्न होते हैं नित्यम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च, वो प्रसन्न होते हैं च भी रमन्ति च दिव्य आनंद भोगते हैं। ये क्या है प्रभुपाद, ये दोनों शब्दों को यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। आरंभ में क्या हो जाता है, हम लोग तुष्टि मिल जाते हैं, प्रसन्नता होती है, लेकिन इस भक्ति के परिपूर्णता जब प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, रमन्ति च दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये अंतर है, आरंभ में भी प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, लेकिन अंत में तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया उन्होंने कैसे भक्ति लता, भक्ति क्या है, एक लता के समान है और भक्त क्या है, एक माली के समान है। तो ऐसे वो भक्ति लता को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय हम सबके लिए। उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो अपने कर्म के अनुसार जीव ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, कोई भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया है इसके बारे में, भक्ति लता बीज का क्या अर्थ होता है। सो भक्ति लता बीज का क्या अर्थ होता है, बीज मतलब क्या होता है, वो श्रद्धा, गुरु और कृष्ण के जो उपदेश है उसको सुनकर हम लोगों को भक्ति के प्रति जो आकर्षण जागृत होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। सेवा करने का जो रुचि जागृत हो जाता है उसको आकर्षण श्रद्धा कहते हैं। तो और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माली होना करे से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे से चना। एक व्यक्ति को माली होना चाहिए और माली होकर ये बीज को अपने हृदय में आरोपण करना चाहिए और श्रवण कीर्तन के जल से उसको सिंचन करना चाहिए। बीज बढ़ने के लिए श्रवण कीर्तन का जल डालना चाहिए, है कि नहीं? तो जो भक्ति में हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं उससे श्रद्धा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए हम लोग ये 10वें अध्याय पढ़ रहे हैं ना, जिसके कारण और श्रद्धा बढ़े भगवान के प्रति, है ना। उपजी अभाड़े लता ब्रह्मांड बेदी आय विरज ब्रह्म लोक बेदी परम योम पाए। तो जैसे इस भक्ति लता बीज को पानी डालते हैं वो क्या हो जाएगा, उपजी है मतलब वो बाहर आ जाता है, बढ़ जाता है। सो स्प्रोट्स, और ऐसे धीरे 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 जो लता है वो बढ़ता जाता है। ब्रह्मांड बेदी, ये ब्रह्मांड को बेद करके, विरजा को पार करके, ब्रह्मलोक को भी पार करके परम योग में चला जाता है, ऐसे बोलते हैं। आप जानते हैं ना ये विरजा वगैरह क्या है करके, है ना। तबेया यदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तो वो परम योम में प्रवेश, परम योम ये आध्यात्मिक आकाश है, उसमें प्रवेश करने के बाद जो सर्वोच्च लोक है उसमें कृष्ण लोक में गोलोक वृंदावन में प्रवेश करके भगवान कृष्ण के चरण जो है, जो कल्प वृक्ष के समान है, उसका आरोहण करता है। दूसरे शब्दों में लता को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो सपोर्ट चाहिए या आश्रय ग्रहण करता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये सभी बहुत लंबा लंबा वहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, हम कभी और उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ताहान विस्तार से पले प्रेम फल यहाँ माली से चे नित्य शबनादि जौ। तो गोलोक वृंदावन में वहाँ पे कृष्ण के शरण में जाने के बाद वो जो लता है वो फल को प्राप्त करता है। तो हालांकि भौतिक जगत में रह के जो माली होता है वो हर रोज इस लता को श्रवण कीर्तन का श्रवणादि जल का सिंचन करता है, लेकिन वहाँ पर उसका फल प्राप्त होता है, ऐसे बोलते हैं। यदि वैष्णव, उसके बाद में कुछ बोलते हैं, कुछ हमें जागरूक रहना चाहिए इसको, ये बढ़ता रह, जब रहता है लता उस समय पर हमें कुछ चीज़ों को जागरूक करना। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़ी व छिंदेता रसुकीय पाता। जो वैष्णव अपराध का ये हाथी आ गया, उस हाथी माता मतलब मैड एलिफेंट, माता मतलब मैड तो पागल हाथी, तो आ गया तो उस गार्डन में तो क्या हो जाता है, तो इसको वो उखाड़ के फेंक देगा इस लता को। तो ऐसे वो कहते हैं, और उखाड़ के फेंकने के बाद क्या हो जाते हैं, सभी ये लता को जो पत्ते वगैरह है सब सूख जाते हैं। ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती रहे चे नहाय उद्गमा। तो इसलिए एक व्यक्ति को अच्छा उसको क्या करना चाहिए, तो आवरण मतलब सो उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बॉडी प्रोटेक्शन, रक्षा करना चाहिए उसको, फेंसिंग करना चाहिए। ये फेंसिंग क्या है फिर बताइए, भक्तों का संघ, भक्तों का संघ यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद एक शिक्षा देते, ऐसे आध्यात्मिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अच्छे भक्त नहीं है तो भी कृष्ण आंदोलन में ही रहना चाहिए। वो सीधा आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहना चाहिए ऐसे, तो भक्तों के संग से दूर नहीं जाना चाहिए ऐसे लोग। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भक्ति मुक्ति वांछयत असंख्य तारा लेखा, उस भक्ति लता के साथ साथ अन्य उपशाखा भी बढ़ सकते हैं। ऐसे होता है ना, आप कोई पौधा लग जाते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य पौधे भी वीड्स तो वो भी बढ़ते हैं। जैसे हम आप पानी वो पौधों को डालते हैं, उस पौधे को डालते हैं, अन्य पौधे भी उसका लाभ उठाते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उससे क्या किसका पुष्टि मिलता है, अनर्थों को भी पुष्टि मिलता है। वो कैसे होता है, हम लोग जब दूध पीते हैं तो शरीर को शरीर दुष्ट पुष्ट हो जाता है, इसके साथ साथ इंद्रिया भी प्रबल हो जाते हैं ऐसे। तो इसका अर्थ है हम लोग अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत उपशाखाएं आ जाते हैं। तारा लेखा असंख्य, तारा लेखा मतलब ये असंख्य होते हैं, एक पौधा होता है लेकिन उसके साथ साथ कितना ये अन्य जो जरूरी नहीं है ऐसे पौधे उग जाते हैं। निषिद्धाचार कूटीनाति जीव हिंसना लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखा गणा, उनके नाम बता रहे हैं यहाँ पर। भक्ति के साथ साथ क्या क्या आ जाते हैं हृदय में, निषिद्धाचार जो गिरा हुआ ऐसे आचार दुराचार, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, कूटीनाटी डिप्लोमेसी ऐसे भी कभी कभी देखा जाता है ना, डिप्लोमेसी भक्तों में भी डिप्लोमेसी होता है। जीव हिंसन जीवों को हिंसा करना, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करना, ये सब हो जाता है। तो इनको हमें निकाल देना चाहिए। सेका जल पंच उपशाखा भाड़ी आया स्तब्ध न मूल शाखा भाड़ी ते न पाया। सो सेका जल पाना उपशाखा भाड़ी आया, तो जब हम लोग पानी डालते हैं तो ये सब उपशाखाएं बढ़ जाते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सा हमें पौधे को बढ़ाना है और इनको, इनकी कभी कभी ऐसा भी होता है वो जो वीड्स है जो अन्य अन्य पौधे हैं वो हमारे जो पौधे जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं उसके समान ही दिखता है, समझ में नहीं आता। विशेष करके आरंभ में आप देखिए ऐसा होता है ना, तो इसलिए उसको जागरूकता से समझना चाहिए, उसके लिए ये सभी ज्ञान होना चाहिए हमें। सो प्रथमे ही उपशाखा खरये छेदन तबे मूल शाखा बड़ी आया वृंदावन, आरंभ में ही उन अन्य शाखाओं को अन्य पौधों को क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तब वो वृंदावन की ओर ये शाखा बढ़ जाते है। हमारा जो पौधा है भक्ति के लता है वो बढ़ता है। प्रेम पल पाकी पड़े माली अस्वाधया लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाया। सो वो प्रेम पल पाकी पड़े, जब प्रेम का जो पल प्राप्त होता है उसको जो माली जो है वो गार्डनर जो भक्त होता है उसको आस्वादन करता है। सो और लता अवलंबी माली जो लता के ऊपर निर्भर है वो कल्प वृक्ष को प्राप्त करता है। तहां से ही कल्प वृक्षेरा खरे ये सेवन सुखे प्रेम पल रस खरे आस्वादन। जब भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं जिनको कल्प वृक्ष को तुलना किया गया है, ये प्रेम फल का जो रस है वो भक्त लोग बहुत ही आनंद से आस्वादन करते हैं। यही था परम पलम परम पुरुषार्थ यान्द्रे आगे थ्रण तुल्यचारी पुरुषार्थ। इस भौतिक जगत में लोग धर्म अर्थ काम को मोक्ष को प्राप्त करते हैं, करने की इच्छा करते हैं, ये पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है उसके सामने ये सब क्या है, एक तृण के समान है। तब चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक को उल्लेख करते हैं, रुद्धा सिद्धि व्रज विजयिता सत्य धर्म समाधिर धर्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्ते बतावत यावत प्रेमना मधुरिपो वशिकार सिद्धौषधीना गंधोप्यंतकरण शरणी पांतता न प्रयाति। जैसे तो वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, एज लॉन्ग एज देर इज नॉट द स्लाइटेस्ट प्रेग्रेंस ऑफ योर लव ऑफ कृष्णा विच इज परफेक्ट मेडिसिनल हर्प फॉर कंट्रोलिंग लॉर्ड कृष्णा विद इन द हार्ट द ऑपुलेंसेस ऑफ मेटेरियल परफेक्शन नोन एज सिद्धि इज द ब्राह्मणिकल परफेक्शन सत्य क्षमा तिचिक्षा एंड सो ऑन द ट्रांस ऑफ द योगीज एंड मोनिस्टिक ब्लिस ऑफ ब्रह्मन ऑल सीम वंडरफुल फॉर मैन। इसका दूसरा अर्थ क्या है, एक बार भगवान के प्रेम का जो ऐसा आभास भी हमें हो गया जो भगवान को भी नियंत्रण करता है, ये भौतिक जगत के सभी ऐश्वर्य या सिद्धि है या हमारा ब्राह्मण धर्म में जो परिपूर्णता है, ये योगियों का समाधि है और ब्रह्मवादियों का ब्रह्मानंद है, सब कुछ बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन एक बार भगवान का वो प्रेम का जो आस्वादन हमें हो जाता है तो ये सब कुछ तृण एक तिनके के समान हो जाता है। शुद्ध भक्ति हैते यहाया प्रेम उत्पन्न अतएव शुद्ध भक्ति रही है लक्षण। सो फिर उसके बाद में ये शुद्ध भक्ति को वर्णन करते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम करके। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो आनंद उनको प्राप्त हो जाता है तो वो तृण के इस भौतिक जगत के सभी आनंद जो है वो तृण के समान हो जाते हैं, इतना उनको आनंद मिलता है। तुष्यंती च रमंती च, ये शब्द का अर्थ है। ये जो इसी जो लता जो बढ़ता है उसको भी वो नौ भक्ति के जो नौ स्तर है उससे तुलना कर सकते हैं। आदो श्रद्धा तथा श्रद्धा क्या है, बीज है, साधु संग क्या है, उसको फेंस है रक्षा करने के लिए, ऐसे उसको तुलना करके समझ सकते हैं। इसके ऊपर ही जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर जो रूप गोस्वामी को सिखाया है उसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो एक ग्रंथ ही लिख दिया माधुर्य कदम भी नहीं करके। तो वहाँ पर ये भक्ति लता के बारे में वर्णन करते हैं, हर एक ये नौ स्तरों को तुलना करते हुए जो आसक्ति मतलब वो लता में क्या है, फूल प्रकट हो रहे हैं या फूल के पहले जो अंकुर होते हैं वो उसको आसक्ति कहते हैं, और भाव मतलब फूल प्रकट हो जाते हैं, प्रेम मतलब वो फल है। तो ऐसे कैसे होता है उसका वर्णन करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर अंत में वो इतना आनंद आता है उनको भगवान के प्रेम में, इतना लीन हो जाते हैं भक्त लोग कि उनको इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। तो ऐसे तो श्लोक क्रमांक 10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुभयम्। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ कि जिस द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ पर ये शब्द तेषां सतत युक्तानां, वो सतत उनके ऐसे लगे रहते हैं, जैसे कैसे लगे रहते हैं जैसे पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, और भजताम प्रीति पूर्वकम प्रेम से मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, या बुद्धि योग यहाँ पर ये शब्द को प्रभुपाद वर्णन करते हैं। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया बुद्धि योग, क्योंकि वहाँ पे ये शाते विहिता संके बुद्धि योग है त्विमाम शुनु बुद्धियायुक्त तो ये पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। हम लोगों ने चर्चा किया बुद्धि योग क्या है, ये सभी योग भक्ति योग है, बुद्धि योग प्रॉपर बोलते हैं। सभी योग क्या है, सभी पूरा यो योग का जो पूरा सीढ़ी है वो सब भक्ति योग है, सभी बुद्धि योग है। इसलिए बुद्धि योग को क्या किया गया, एक कंप्लीट योग, यहाँ पर इस तात्पर्य में कहते हैं ना, ये दूसरे पैराग्राफ के अंत में देखिए, नहीं पहले पैराग्राफ के अंत, इसलिए वेर इट इज, पहले पैराग्राफ के अंत में देखिए, नहीं तीसरे पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ के अंत में, या भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है, ये पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। दिस इज अ कंप्लीट योगा, द कंप्लीट पाथ ऑफ योगा इट इज। तो यह क्या है, परिपूर्ण योग है, ये सब कुछ वो उसमें आता है, और विशेष करके बुद्धि योग, क्योंकि अन्य योगों को भी उसमें आते हैं, इसके कारण उसको कंप्लीट योग कहते हैं। सभी उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, कैसे अलग अलग योगों में अलग अलग, वो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक भी हम लोग उससे चर्चा कर रहे थे। कर्म योग में कर्म होता है, ज्ञान योग में वो कर्म योग ज्ञान और वैराग्य में बढ़ जाता है तो वो ज्ञान योग हो जाता है, फिर वो ज्ञान योग जो ध्यान में बढ़ जाता है तो उसको ध्यान योग कहते हैं, और वो भक्त प्रेम या सेवा को प्राप्त करता है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो ऐसे भक्ति योग में अन्य सभी योगों के जो कंपोनेंट्स है वो सब कुछ उसमें है, इसलिए ये पूर्ण योग कहते हैं उसको, कंप्लीट योगा, सब कुछ आता है। हम लोग भी ज्ञान अर्जित करते हैं, हम लोग भी ध्यान करते हैं, हम लोग भी कार्य करते हैं, है ना, इसलिए ये परिपूर्ण योग है, ऐसे बोलते हैं। तो हम इसको ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि हम पहले ही आप याद कीजिए, वहाँ पर वो हमने चार्ट भी बनाया था ना उसका, बुद्धि योग का, उसको याद कीजिए आप, ठीक है। और तेषां सततयुक्तम, यहाँ पर अंत में एक चीज़ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब ऐसे व्यक्ति, एक भक्त बहुत ही गंभीर है, प्रामाणिक है, भक्ति में सेवा में लगा है, लेकिन वो क्या करते नहीं, आध्यात्मिक गुरु का फायदा नहीं उठाते हैं, उनका सहायता नहीं लेते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं है कि उनका सहायता लेना चाहिए था, और वो संस्था में भी हो सकते हैं, तो ऐसे भक्त को भगवान क्या करते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक है, उन प्रामाणिकता से सेवा में जुड़े हैं, उनको हृदय में क्या करते हैं, उनको ये बुद्धि दे देते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कि यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ साथ सभी प्रकार की सेवाएं की जाए, तेषाम सतत युक्ता नाम व्रजताम प्रीतिपूर्वक, ऐसे भक्त है तो भगवान उनको बुद्धि दे देते हृदय में, ठीक है। सो उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुँचे जाए। तो हम लोग छठे अध्याय में जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा उनको प्राप्त हो जाते हैं, जितात्मना जो इंद्रियों को वो सीधा परमात्मा के मार्गदर्शन में कार्य करता है, वैसे ही यहाँ पर भक्त भी जो सतत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो वो लोगों को भी ऐसे ही होता है। तो उसके बाद तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करता करते हुए ज्ञान के प्रकाश मान दीपक द्वारा अज्ञान जम अंधकार को दूर करता हूँ, ऐसे कहते। ठीक है, तो हम लोग कल इसको चर्चा करेंगे आगे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? वो जो भक्ति लता का वर्णन है उसमें परिभाषा बहुत अच्छा है, आपको समय मिला तो उसको पढ़ लीजिए। वो मध्य लीला के यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका उल्लेख दिया है ना, रेफरेंस दिया है ना। सो मध्य लीला के अध्याय 19 में श्लोक क्रमांक 151 से, श्लोक क्रमांक 151 से लेकर 58 या नहीं, 151 से 165 श्लोक तक, मतलब 15 श्लोक वो भक्ति लता का वर्णन करते हैं। उसके तात्पर्य बहुत अच्छे है, पढ़ लीजिए उसका। और वहाँ पर कैसे वर्णन आता है, जो आनंद का जो वर्णन भक्त लोग महसूस करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करके, उसके बारे में भी वर्णन आता है। और अनर्थ क्या क्या होते हैं उसका वर्णन आता है, जिनको हमें जानकर उसको निकालना है आरंभ में ही, तो उसके बारे में भी वर्णन आता है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए। ठीक है, और कुछ
मानव संप्रदाय है उसमें ब्रह्मा जी पहले आचार्य हैं, ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं, विमोच हो जाते हैं।
वो ये सिद्ध करने के लिए कि वो आचार्य के रूप में विमोचित नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक देवता का भी रोल अदा कर रहे हैं, इसके कारण भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कैसे वो भ्रमित होते हैं देवी देव, उसके लिए वो लीला है। समझ आ रहे, इसलिए मध्वाचार्य ने वो ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर टीका नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं, है ना, हम लोग समझ सकते हैं, एक लीला है वो। समझ में आ गया, पहले वो पहले उस सत्र में हम लोग देखा ना, भागवत में ऐसे वर्णन हुआ देवी देवता भी विमोहित हो जाते हैं। देव भागवत में कहाँ पर हुआ है, भागवत में पहले श्लोक में ऐसे वर्णन हुआ है, मुह्यंति असुरया। अभी उस वाक्य को सिद्ध करना चाहिए, वो भगवान का एक गुण होता है कि वो देवी देवताओं को भ्रमित करते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण चाहिए ना, इसलिए सर्वोच्च देवता कौन है, ब्रह्मा जी है, वो तो विमोहित हो जाना चाहिए, है ना, तब हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि अन्य देवता आसानी से विमोहित हो जाएंगे। तो लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो पतित हो गए ब्रह्मा जी, पतित नहीं हुए, सिर्फ उसको दर्शाने के लिए वो एक दृष्टिकोण से सहायता कर रहे हो, समझ में आ गए, वो लीला में सहायता कर रहे हो भगवान, वो भ्रमित नहीं हुए, हालांकि ब्रह्म विमोहन लीला करके लेकिन सहायता कर रहे हैं। जैसे भगवान भी रोते हैं सीता देवी को खोकर, वन वन में जाके रोते घूमते, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है या अनफैक्ट हस्बैंड है ऐसा, ठीक है, या उनको पता नहीं है कहाँ पर सीता देवी है। वैसे ब्रह्मा जी वो हमारे क्या है, वो आचार्य है, आदि गुरु है संप्रदाय में, फिर भी भगवान को ये सिद्ध करने के लिए ये जो सिद्धांत है सिद्ध करने के लिए ऐसे, ठीक है। और कुछ हम ऐसा वर्णाश्रम को स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर पाप नहीं होते है ना। जैसे उदाहरण कैसे उदाहरण है, भागवत में पहले स्कंद में उदाहरण आता है ना। पहले स्कंद में क्या उदाहरण आता है, परीक्षित महाराज के राज्य में ये चार चीज नहीं होते थे। कली ने पूछा मुझे एक स्थान दीजिए करके, तो उन्होंने क्या बताया, जहां पर ये चार चीज होते हैं वहां पर जाओ करके। लेकिन वो ढूंढ के कहीं भी मिला नहीं वो। उन्होंने क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से उनको चीटिंग कर दिया परीक्षित महाराज। तो अभी प्रश्न उठता है, अभी तो कलियुग है, वहाँ पर प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं, अभी तो कलियुग है, ऐसे कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। बारिश हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग छाता का सहायता ना लें, हम लोग भीग जाए, छाता का सहायता लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन कलियुग में क्या है, छाता है लोगों को ऐसे बचाने के लिए। तो उस मेरा समझ क्या है, उस क्योंकि हमारा मूल आधार क्या है, गीता और भागवत है, तो ऐसे वर्णन आता है भागवत में। तो हम लोग ऐसे समाज बनाने वाले हैं जो गीता और भागवत के आधार पर है। इसलिए हमें यह समझ में आता है कि ऐसे समाज बनाना है जहाँ पर पाप नहीं हो, जहाँ खली में खली का प्रभाव ना हो। प्रभुपाद जी इसको आठवें स्कंद में भी बोलते हैं, जहाँ पर भगवान राम के आठवें नवें स्कंद में भगवान राम का वर्णन आता है, राम राज्य का वर्णन आता है। अभी इस कलियुग में भी ऐसे राज्य को हम लोग स्थापित कर सकते हैं, ये वर्णाश्रम को हम लोग स्थापित करेंगे तो ऐसे बोलते हैं। ये कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जो भागवत के सिद्धांतों के आधार पर है। उसके लिए तो क्या है, हमने जैसे चर्चा किया, कोई भक्ति कर रहे तो वही प्रायश्चित, अन्य कोई प्रायश्चित नहीं कर रहा।
उस श्लोक में लिखा है भक्ति लिखा है
नहीं, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो साधना भक्ति का बोल रहे हैं। साधना भक्ति में भी, साधना के स्तर पर भी शुद्ध भक्ति होता है, जो अन्य अभिलाषा नहीं है, मोटिव नहीं है, सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा करते हैं वो भी, वो साधना के स्तर पर शुद्ध भक्ति है। रूप गोस्वामी जब इन चीज़ों को वर्णन करते हैं, वो शुद्ध भक्ति तीन स्तर में वर्णन करते हैं, साधना के स्तर पर, भाव के स्तर पर और प्रेम के स्तर पर। तो वहाँ पर वो लिखते हैं भक्तों को अन्य कोई प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है, साधना भक्ति। तो ऐसे हम लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, ऐसे समाज को स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ क्या हुआ, भगवान
भगवान
भगवान से डर लगता
है,
गॉड फियरिंग पीपल ऐसे को बोला जाता है ना। वो ऐसे होता है भौतिक जगत में, आरंभ नवसखी अवस्था में ऐसे होता है, बहुत ही नवसखी अवस्था, वो भगवत चेतना का बहुत ही नवसखी अवस्था है। वो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पर वो चार स्तर का वो धर्म के बारे में बोलते हैं, रिलीजन ऑन फोर लेवल्स। तो पहला है वन परफॉर्म्स रिलीजन आउट ऑफ फियर, पहला स्तर। Yeah. Fear or desire first? Fear. Where you read that?
Ascending from fear to love, we had one.
Okay. तो पहले क्या है, धर्म को क्या करते हैं, भय से पालन करते हैं, तो वो बहुत ही निम्न स्तर का धर्म है। वो मुझे भगवान क्या है ये नहीं, भगवान का मैं भक्ति नहीं करूँगा या कुछ धर्म का धार्मिक नियमों को पालन नहीं करूँगा तो भगवान मुझे बहुत कष्ट देंगे करके, है ना। ये ऐसे ईसाई और मुसलमान धर्मों में ऐसे होता है, तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो शाश्वत रूप से नरक में सड़ोगे, ऐसे बोले। एटर्नल डैमनेशन कहते हैं उसको। एटर्नल डैमनेशन मतलब उनका एक ऐसे धारणा है, शाश्वत रूप से नरक में भेजे जाओगे भगवान द्वारा, आप ये धर्म को स्वीकार नहीं करोगे तो। उसको भय सृष्टि करते हैं वो लोग, ऐसे बोल के उसको गौर से बोलते हैं, ये ऐसा धर्म है। फिर उसके बाद में इच्छा, हम लोग कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं धर्म को पालन करके, धनम देही पुत्रम देही पत्नी देही, वो है ना, कष्ट मिट जाए धन गरावे जय जगदीश हरे, ऐसे नॉर्थ इंडिया में बहुत बातें हैं ना, ये कष्ट मिट जावे धन गरावे धन गरावे जय जगदीश, ऐसे जय जगदीश हरे, वो उनका गीत होता है मंदिर में आके, ऐसे गीत गाते हैं, ये सब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है ना। तो ये क्या है, वो धर्म क्या है, इच्छा के स्तर पर है। अभी हमें भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा है, वो दूसरा। और तीसरा है कर्तव्य के स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है ऐसे हम लोग समझते हैं। तो धर्म को पालन करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, ऐसे उसको पालन करते हैं, वो सतोगुण में होता है। और चौथा क्या है, प्रेम से हम धर्म को पालन, भगवान को सेवा करने के। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्ष जय अहितुकी अप्रतियता ये आत्मा सुप्रतियत, ऐसे चार सर्पों का होना। वो बहुत ही निम्न दर्जे का भगवत चेतना है, ठीक है, बहुत ही निम्न। या और कुछ जरूर होगी ना क्योंकि हमारे चेतना के अनुसार ही होता है सब कुछ। हाँ, भाई से वही करना है।
माधव के बारे में, नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली, एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड केयर एंड कॉशन,
तो हमने बताया ना, इसलिए जिज्ञासा करना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी क्या करते थे, भक्ति वेदांत स्वामी सेज अर्थ वाटर फायर एयर ईथर कम्स फ्रॉम कृष्णा, हाउ इट कम्स फ्रॉम कृष्णा यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज विवेक, ही सेज दैट इज इंटेलिजेंस, है ना। कैसे ये पृथ्वी जल वायु अग्नि कैसे भगवान से आता है, हम लोगों ने भी चर्चा किया उसके ऊपर, क्या हमने समझ लिया कि कैसे आता है, हम लोग चर्चा किए शब्द से कैसे आता है सब कुछ, पहले शब्द था, ठीक है। और कुछ बहुत सारे भोग की प्रवृत्तियां जागृत होती है और भौतिक लाभ प्राप्त होता है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत ही कम होता है, जो जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करना बहुत ही दूर है। ये नाम अपराध युक्त नाम जप करने का फल है। ऐसे पद्म पुराण में वर्णन आता है अंत में। लेकिन निरंतर करते रहने से उससे उससे मुक्त हो जाते हैं। वो भी एक श्लोक है, एक शास्त्र है, दो श्लोक है ऐसे। क्या करना चाहिए अंत में ये अपराधों से मुक्त होने के लिए? निरंतर करते रहना चाहिए, धीरे 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 उसका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, वो दस नाम अपराध पद्म पुराण से ही है ना। सो वो सभी नाम अपराधों को उनको बताने के बाद ऐसे बताया जाता है। वो श्लोक भी भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख करते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं उसको। प्रभुपाद जी ने भी आठवें अध्याय के अंत में आप पढ़ी है नेक्टर ऑफ डिवोशन। और
तो हम देखते बता रहे दक्षिण भारत में कुछ अपने शिव को परम मानते हैं,
वो भक्त नहीं है वो,
मतलब वो कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है उसकी इस तरह से। तो कैसे मतलब स्थापित करना है अगर कैसे कि वो भक्ति नहीं है, मतलब अगर वो कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है
पहले क्या स्थापित होता है? भक्ति आरंभ होने से पहले संबंध ज्ञान आता है, भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, वो सिद्ध करना। बाद में भक्ति, उनके ऐश्वर्य को जानने के बाद भक्ति शुरू होता है। तो पहले उनको वो सिद्ध करना पड़ेगा कि परम सत्य कौन है, उसके क्या लक्षण है, उसके बाद में भक्ति। और वो लोग तो बहुत अपराधी है, वो लोग ईर्ष्या करते हैं, वो ऐसे मासूम नहीं है, वो लोग उसके लिए बहुत सारा फिलॉसफी बनाया है, बहुत बड़ा संप्रदाय है। कर रहे हैं ना साधना भक्ति में, साधना भक्ति के अंगों को पालन कर रहे हैं ना, सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना। वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सोते रहते हैं और बाहर जाके इधर उधर घूम के आ जाते हैं, ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चौसठ अंगों को पालन करना चाहिए, वो भक्ति है। हाउ टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस, कैसे भक्ति की जाती है, उसको चौसठ अंग का वर्णन करता है। तो ये चौसठ अंग को हम पालन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वही सम्यक व्यवस्थित हो गई सर। अब पीछे बजते महामंडन ने बात, ठीक है, अच्छा कौन क्रिटिसाइज किया? वो ज्यादा खाने चाहते हैं ना, ऐसे हाथी की तरह खाना चाहते हैं वो लोग फास्टिंग। उनको बताना चाहिए कि भक्ति भी एक विज्ञान है, भक्ति के कई सारे अंग होते हैं, कुछ पालन करना चाहिए। और वेद शास्त्रों में ये सब चीज़ दिए गए, अपने मन के मन गतित भक्ति नहीं होता है। और ये भी वर्णन है ना, भक्ति जो वेद शास्त्र पुराण उसके ऊपर आधारित नहीं है तो वो उत्पात होता है करके। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरित्रिक विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात है, वो कर पाते हैं। अपने मन गणित ढंग से भक्ति नहीं होता है, भक्ति एक विज्ञान है, वो सभी ये वेद शास्त्रों में दिया गया है, उसके अनुसार भक्ति करना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका अर्थ है कि मैं किसी के पाप और पुण्य के, वो हमें पाप और पुण्य करने के लिए कारण नहीं है, वो अर्थ है। वो पाप और पुण्य के कारणीभूत नहीं है, वो हमें समझना चाहिए। वो हम लोग अपने इच्छा से करते हैं। नहीं से वो ऐसे वो भाषा में ऐसे वर्णन किया गया, उसका अर्थ क्या है पता है? मैं कारणीभूत नहीं हूँ ऐसे बोलते पाप और पुण्य का। समझ रहे हैं? वो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि हम लोग उनके शरण में आए, और जो उनके शरण में आते हैं वो ले लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, है ना? अंत में यही निष्कर्ष है भगवद्गीता का। कभी कभी भगवद्गीता में ऐसे कुछ विरोधाभास भी है, तो ये अंतिम वाक्य जो है वो प्रमुख है, वो हम समझ। ठीक है, यहाँ पर भगवद्गीता में पहले वो बोलते हैं आप क्या करो, युद्ध करो, आपको क्या मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद बोलते हैं जय अपजय, यू नो, जय पराजय या लाभ हानि को परवाह किए बिना युद्ध करो। तो ये दोनों शिक्षा क्या है, अलग अलग स्तर पर। ठीक है ना, ऐसे वो भी है ना, वो 11वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन आता है। 36वां पहले अध्याय के 36वां श्लोक में वो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच में विरोधाभास आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार उनको मार देना चाहिए, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार उनको नहीं मार सकते। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम बहुत धर्मशास्त्र का बहुत बोला, तुमको कोई विद्या नहीं है, आध्यात्मिक विद्या नहीं है, ऐसा इसलिए तुम मूर्ख हो, भगवान बोल रहे। सब बुद्धिमान लोग हैं ना। हरे कृष्ण।